हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश पिछले 2 दिनों से उसका इंतजार कर रहा था। उसके मना करने पर वो गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही मेरे साथ काम करना है तो सीधे मना कर दो ना। इस तरह से रोज रोज बहाने क्यों बना रही हो? वेदांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर त्रिशा थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसे समझाते हुए बोली, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं सोच रही थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले थोड़ा वक्त साथ बिताएं। आखिरकार बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ावा देना भी जरूरी होता है ना? वेदांश ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम किस तरह का प्लान सोच रही हो? अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में कॉल पर भी डिस्कस कर सकते हैं अभी। त्रिशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं मिलकर बात करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ जाऊं, हम साथ डिनर करेंगे, बातें करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। वेदांश एक पल के लिए चौंक गया। उसने त्रिशा की इस अप्रोच की उम्मीद नहीं की थी। उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, ना ही प्लान किया था। वेदांश ने चौंकते हुए कहा, क्या आज शाम मेरे घर डिनर पर? त्रिशा ने बात संभालते हुए कहा, हाँ आज शाम, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? और सुनो, मैं अकेले नहीं आ रही हूँ, कुछ और लोग भी मेरे साथ होंगे। तुम जानते ही हो कि कनेक्शन और बिजनेस रिलेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, तो मेरे कुछ करीबी लोग भी होंगे जो सिर्फ मेरे कहने पर वहाँ तुमसे बात करने और मिलने आने के लिए राजी हुए हैं। तो अब बोलो, मैं वहाँ पर आऊँ उन लोगों को लेकर या फिर नहीं? त्रिशा ने जानबूझकर वेदांश को ऐसी उलझनने वाली बातों में खसाया। इसे सुनकर वेदांश के चेहरे पर थोड़ी चिंता की रेखाएं उभर आईं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है तुम आ सकती हो। त्रिशा ने हंसी के साथ कहा, ग्रेट, मैं शाम 7 बजे तक पहुंचूंगी। मिलते हैं फिर आज शाम तुम्हारे घर डिनर पर। त्रिशा ने बात खत्म करते हुए कहा और इसके साथ ही फोन कट गया। वेदांश ने भी फोन नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। उसकी टेंशन अब और बढ़ गई थी। इस वक्त त्रिशा सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थी, वो इस समय कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। किसी भी सूरत में वो उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन त्रिशा का इस तरह से खुद को ही डिनर पर इन्वाइट करके अचानक घर आना और अपने साथ और लोगों को भी लाना, ये सब कुछ उसके लिए अनकंफर्टेबल करने वाला था। वो जानता था कि इस वक्त उसे सबसे अच्छी मेजबानी करनी होगी। वो ऑफिस में बैठे बैठे सोच में पड़ गया कि अब जल्दी से घर पहुंचकर तैयारियां करवानी होंगी। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाकर बाकी कामों का इंतजाम करने को कहा और खुद जल्दी से घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपने कुक रवीश को आवाज़ दी, रवीश जल्दी यहाँ आओ। वेदांश की आवाज़ बड़े से घर के डाइनिंग एरिया के अंदर गूंज उठी। वेदांश बहुत कम ही इस तरह किसी को आवाज़ लगाता था, इसीलिए उसकी आवाज़ सुनते ही रवीश किचन से भागते हुए आया। जी साहब, कहिए क्या करना है? खाना ठीक नहीं था क्या सुबह का? कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़। रवीश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वेदांश ने कहा, आज शाम कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग होंगे, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। डिनर का मेन्यू तैयार करो, कुछ स्पेशल हो, और हाँ स्पेशल ड्रिंक भी तैयार रख लो। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। जो आ रहे हैं वे सब मेरे बहुत ही खास लोग होंगे, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वेदांश ने अपनी तरफ से अच्छी तरह समझाते हुए अपने हेड कुक को शाम के डिनर के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। रवीश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है साहब, लेकिन क्या आप मुझे अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों के आने की उम्मीद है? इससे मैं थोड़ा ज़्यादा खाना बना लूँगा जिसकी कमी ना पड़े। वेदांश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मान लो कि 6-7 लोग हो सकते हैं, तैयारी उसी हिसाब से करना। और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए रवीश, ये सब इन्वेस्टर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रवीश ने जवाब दिया, आप चिंता ना करें साहब, सब कुछ परफेक्ट होगा। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देता हूँ। आपको कुछ खास बनवाना है तो वो भी बता सकता हूँ, मैं वो भी बना दूंगा समय से पहले ही। वेदांश ने उसकी बात पर कहा, नहीं तुम अपने हिसाब से ही एक अच्छा मेन्यू डिसाइड कर लो, मुझे इतनी समझ नहीं है इन चीज़ों की और पता भी नहीं है किसको क्या पसंद आएगा, लेकिन तुम कुछ ऐसा बनाना जो सभी को पसंद आए। रवीश अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद वेदांश ने एक बार फिर गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा संयमित करने की कोशिश की। वो जानता था कि आज की रात उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। त्रिशा के साथ ये डिनर सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग में ही थी, ये उसकी कंपनी के अच्छे फ्यूचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता था। वेदांश डाइनिंग एरिया से बाहर निकलकर अपने लिविंग एरिया में गया और सोफे पर बैठते हुए सोचा, कितनी अजीब सिचुएशन है, त्रिशा का इतना बेझिझक होकर आना और खुद को इनवाइट करना। पता नहीं क्या करना चाहती है वो लड़की, कुछ तो चल रहा होगा उसके दिमाग में और इसीलिए वो इतने नाटक दिखा रही थी। वैसे वक्त का फायदा सब उठाते हैं और वो भी उनमें से ही है। वेदांश का मन उलझनों से घिरा था। वो किसी भी तरह से त्रिशा के साथ गलतफहमी नहीं चाहता था। उसे हर हाल में अपने और त्रिशा के बीच के प्रोफेशनल रिश्ते को सही रखना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना महसूस हो। थोड़ी देर के लिए वो अपने बारे में सोचना नहीं चाहता था। वेदांश की माँ ने जब किचन में इतनी सारी तैयारी होती देखी तो उन्होंने रवीश से इस बारे में पूछ लिया था और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था। कुछ दिन बाद अंबिका भी वहाँ पर आई थी और उसने देखा कि इतना सारा खाना बन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है घर में। अंबिका ने अपनी सास से पूछा, आंटी जी इतनी तैयारी, कौन आने वाला है और ये सब तो व्रत का खाना भी नहीं है, क्या कोई दावत है आज शाम को? सुनीधि जी ने अंबिका की बात का जवाब देते हुए कहा, रवीश ने बताया मुझे, वेदांश ने ही उसे ये सब करने का ऑर्डर दिया है और वो तो उसके हिसाब से ही काम करता है। पता नहीं क्या चलता रहता है वेदांश के दिमाग में। हो सकता है उसकी कंपनी के कुछ लोग आ रहे हों और उसे पूछने का भी कोई फायदा नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर अंबिका ने कहा, यहाँ पर आते वक्त मैंने उन्हें देखा, वो लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे थे, शायद मैं एक बार पूछकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ बता दें। अंबिका की सास ने कुछ भी नहीं कहा। अंबिका वहाँ से सीधा लिविंग एरिया में आई और उसने वेदांश के सामने आते हुए कहा, वेदांश कोई आ रहा है क्या? तुमने इतने लोगों के लिए खाना बनाने को बोला है? वेदांश ने काफी आराम से उसकी बात का जवाब दे दिया, हाँ कंपनी से कुछ जरूरी लोग आ रहे हैं शाम को डिनर पर, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है और बिजनेस रिलेशन भी थोड़े बढ़ाने हैं उसी के लिए, लेकिन तुम लोगों को इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना नवरात्र का व्रत करो और अपना खाना अलग से बनवा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस शाम को कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए डिनर पर। अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वेदांश जिस तरह से ये बात बोल रहा था, अंबिका को सब काफी अजीब सा लग रहा था। वेदांश ऐसा बर्ताव नहीं करता था, लेकिन आज वो कुछ बदला हुआ सा था। वो समझ गई कि वेदांश किसी बात को लेकर परेशान था। थोड़े समय बाद शाम के 6 बजे थे। उसने अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली और एक जेट ब्लैक सूट निकालकर पहना। फिर उसने खुद को आईने में देखा, जैसे खुद से कह रहा हो, तैयार हो जाओ वेदांश, ये रात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। वेदांश डिनर के लिए पूरा रेडी हो चुका था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने घड़ी की ओर देखा तो 7:20 बाकी थे। वो नीचे उतरा तो देखा कि उसके कुक रवीश ने किचन में पूरी तैयारी कर दी थी। डिनर टेबल सज चुकी थी और उसके घर के मेन कुक रवीश के बने हुए खाने की महक पूरे घर में फैल रही थी। सब कुछ तैयार है साहब, रवीश ने वेदांश के सामने आकर उससे कहा। वेदांश ने सेटिस्फैक्शन भरी नज़रों से टेबल को देखा और हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, बस अब उनके आने का इंतज़ार है। वेदांश वहां से वापस लिविंग एरिया में आकर सोफे पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया और फिर उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। अभी भी 7:15 बाकी थे। वेदांश ने टाइम देखा और मन ही मन सोचा, अब देखना है ये डिनर सिर्फ बिजनेस डील तक रहता है या कुछ और भी इसमें छुपा है, क्योंकि मुझे त्रिशा की बातों से उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, वेदांश का शक सही है या फिर नहीं, और क्या करना चाहती है त्रिशा? क्या वेदांश टाइम रहते समझ पाएगा उसके इरादे, या उसकी वजह से टूट जाएगा वेदांश और अंबिका का बनता हुआ रिश्ता? क्या वेदांश अंबिका और अपनी माँ को इस डिनर में इन्वॉल्व करेगा या फिर नहीं? इन सवालों के जवाब बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा ये आज का एपिसोड?